अब आइए जरा नेमतों को एक एक करके देखते हैं और फिर इस पे शुक्र करना सीखते हैं कि किस तरह से हम इन नेमतों को लें और अल्लाह सुबहाना ताला की इन सारी चीजों को अपने सामने रखें। पहली चीज आप देखिए कि जो चीजों का तस्करा हुआ तो सबसे पहली चीज क्या है, ज़ुय्यिनलिन्नासि हुब्बुश्शहवाति मिनन्निसा, औरत। और हकीकत है कि यहाँ औरत से मुराद दो तरह से आप लेंगे। अगर आप निसा का लफ्ज लेते हैं तो आपको पता है कि अरबी जुबान में भी और उर्दू में भी औरत किसके लिए आता है, एक तो वुमेन के लिए आता है, वुमेन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और एक गांव के लोग खास तौर पे अपनी बीवी को क्या कहते हैं, उसकी औरत, उसका मर्द। औरत बीवी के लिए भी आता है और औरत औरत के लिए भी आता है। पहली चीज यहां रखी कि मर्दों के दिल में औरतों की मोहब्बत रख दी अल्लाह ताला ने। तो ये मोहब्बत कैसी है, एक मोमिन के दिल में जो मोहब्बत है ना, ये बीवी की है, और एक आम मर्द के दिल में मोहब्बत औरत की है। फितरत के एतबार से मर्द औरत में कशिश है, इसमें कोई शक नहीं। औरत भी महसूस करती है, लेकिन औरतें फितरत पे अगर हो ना, जिंदा औरतें हो, उनकी औरत पना जिंदा हो, तो औरतें मर्दों में अट्रैक्शन नहीं लेती। वो नहीं उनको मैसेजेस करती कि आओ आई लव यू और आओ मेरे साथ भी कुछ वक्त गुजारो। फितरत के एतबार से औरत तो अपने मर्द को भी कभी पहल नहीं करती, लेकिन कहाँ गैर मर्दों को जाके मैसेजेस देने। लेकिन दुख की बात और जुल्म की बात है कि आज जो स्टाइल ऑफ लिविंग है उसमें मर्द नहीं लड़कियां ढूंढ रहे होते, औरतें भी लड़कियां भी मर्दों को ढूंढ रही होती हैं। तो लिहाजा फितरी तौर पे ऑपोजिट सेक्स की वजह से अट्रैक्शन तो है, लेकिन ईमान वाला मर्द अपने दिल में किसी लड़की की अगर मोहब्बत महसूस करे, पहली बात है ये फितरी है। मैरिड हो कि अनमैरिड हो, औरत हो या मर्द हो, किसी ऑपोजिट सेक्स के किसी दूसरे पर्सन को देकर दिल में ये ख्याल आना कि ये अच्छा है या ये अच्छी है या इससे मेरी शादी हो सकती है या इससे मेरी शादी हो जाए, इसमें कोई गुनाह नहीं है। गुनाह का सिलसिला इससे आगे शुरू होता है। मर्द है जिसको शादी अभी करनी है, मुआशरा है, दुनिया है, बास दफा लड़कियां देखी भी नहीं होती, किसी की जुबान से किसी की बेटी का तस्करा सुना होता है। माँ बहन ही बताती रहती है फलां की बेटी बड़ी अच्छी है, बड़ी नेक है, वो कुरान पढ़ती है, वो ऐसी है। तो मर्द के दिल में आ जाता है कि ठीक है, अगर ऐसी है तो मेरी शादी उससे हो सकती है, नो प्रॉब्लम। सवाल पैदा होता है कि जब किसी मर्द के दिल में या लड़के के, मर्द को मैं लड़का ही बदल दूं क्योंकि हमारे कल्चर में अमूमन लड़के ही को सोचते हैं, तो जब किसी लड़के के दिल में किसी लड़की के बारे में ख्याल आए तो वो क्या करे, क्या हद है, सवाल पैदा होता है ना। देखिए शादी करनी है तो उसका मेयार अल्लाह के नबी ने बड़ा खूबसूरत दे दिया, चार चीजें गिनवा दी कि चार चीजों की वजह से औरतों से निकाह किया जाता है, लेकिन उसमें लिमा लिहा लिहा सबिहा ली जमा लिहा और ली दीनिहा, उसकी खूबसूरती, उसका माल, उसका खानदान, लेकिन दीन। और आपने कहा कि तुम दीन वाली से मुतासिर हो, जैसा लड़का होगा ना उसको वैसी लड़की पसंद आएगी। अत्तय्यिबात लित्तय्यिबीन और अल्खबीसात लिल्खबीसीन, सूरत नूर में हम पढ़ेंगे। गंदी सोच वाले लड़के होते हैं ना, वो गंदी लड़कियों को देख के कहते हैं वाह व्हाट अ डैशिंग, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहते उनसे। आप रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, करप्ट से करप्ट और वल्गर से वल्गर लड़के भी जिन लड़कियों को पैगामे मोहब्बत भेज रहे होते हैं ना, वो कहते हैं हम इनसे शादी नहीं करना चाहते, हम इनसे सिर्फ वक्त गुजारना चाहते हैं, सिर्फ इनको खेलना चाहते हैं। खेलो ना, भंवरे जो बना के दिखा दिए और तितलियां बन के लड़कियां जब फिरती हैं तो फिर मोहब्बतें तो ऐसी बढ़ेंगी ना। अगर आप इस्लाम का निज़ाम दुनिया को दे दें, आइडियल बिल्कुल, आप सोचें ये पूरा होटल है, इसको आप इस्लाम कह दें, ये कमरा क्लासरूम है, वो उधर है, वो इधर है, और सब इधर आने वाले बिल्कुल शरीयत पे चल रहे हैं, इतना आसान है शादी करना और शादी होना। ये सारी खराबियां जो कुछ आज शादियों से पहले हमें बाहर गंदे तरीके से दिखती है ना, ये सब शौहर और बीवी की शादी के बाद उनकी जिंदगी का हुसन बढ़ाती हैं। मर्द के दिल में, लड़के के दिल में ख्याल आता है, पहले सोच ले कि अगर ये वाकई एक अच्छी बीवी माँ बन सकती है, माँ भी तो बनेगी ना कल बच्चों की, उसके बाद सिंपल लड़की से राबता करने की बजाय उसके बाप से करें। देखिए लिखें, लव लेटर लिखना है ना तो लड़की को नहीं लिखो, उसके बाप को लिखो, सीधी सी बात है, आई एम नॉट जोकिंग, उसके बाप को, उसके भाई को लिखो कि आपकी बेटी, यानी मैं आपको तब बता रही हूँ, वो मर्द जिसकी कोई माँ बहन ना हो, हमारे कल्चर में तो चूंकि माँ बहनें ये करती हैं ना, तो हमें अजीब लगता है, लेकिन बाज़ लोगों के हालात ऐसे नहीं होते कि उनका कोई और मर्द है, उसको खुद ही करनी है, किसी दीनदार के पास चला जाए अगर वो दीनदार है कि मुझे शादी करनी है, मेरा ये क्राइटेरिया है, अगर कोई अच्छी बच्ची मिली तो बता दे। सिंपल बात, आप पढ़ के देखें जरा हिस्ट्री, आप कभी जिंदगी रखें, बस अल्लाह दुआ करे कि आप पढ़ेंगे, जब मुहद्दसीन और उलमाए कराम की महफिलें होती थी, 90% शादियां जो होती थी, आपको पता है लड़कों की किससे होती थी? पता है? अपने टीचर्स की बेटियों से। वजह क्या है कि वो इतने खूबसूरत नौजवान, इतने पढ़े लिखे, इल्म दोस्त होते थे, टीचर जाने देगा उसको बाहर कि भाई आओ मैं अपनी बेटी तुम्हें देता, और उनके लिए एक ऑनर होती थी कि मैं अपने उस्ताद की बेटी से शादी करूं और उस्ताद मेरा ससुर बन जाए। मेयार फर्क थे, दीन था, तो दीनदार है तो वो दीनदारों पे जाएगा, ये तो आम हालात की बात है। अब किसी को लड़की पसंद आ गई है, अब क्या करेंगे आप? उसको पैगाम देंगे, उसको ना बताएं, उसके बाप को बताएं कि मुझे आपकी बेटी अच्छी लगती है, क्या मैं उससे निकाह कर लूं? और बेटों में भी वो फिल्मी गैरत नहीं होनी चाहिए कि अब ये निकाह नहीं हो सकता, और ये नहीं हो, पहले खुलेआम छोड़ देते हैं बेटियों को गाय भैंसों की तरह, पता ही नहीं, उनके गले में तो फिर डोरी डाली होती है, बेटियों के गले में तो वो भी नहीं डलती। तो जब बाहर खूब मिलें खरें जो भी, और जब किसी का पैगाम आता है तो कहते हैं बस अब तुम्हें कत्ल कर दूंगा और तुम्हें ज़िबा कर दूंगा। गलत बात है, बिल्कुल अननेचुरल जुल्म हो रहा है। हम यकीन करें हालात आज जिनसे गुजर रहे हैं, मैं कह सकती हूँ कि हमारे बच्चे बहुत दुखी है, मजलूम है, और इन फितनों के दौर में वही बचेगा जिसने बड़ा ही सब्र किया होगा, या फिर अल्लाह का डर है या कोई और माशरे का डर है। मर्द को कोई लगता है वो कहता है कि ठीक है मुझे करनी है, बाप कह देता है ठीक है इट्स फाइन, ठीक है, वो भी तो देखेगा ना कि ये कहने वाला कौन है, बाप नहीं है तो भाई ऑफकोर्स जो उसका महरम है। अगर उनको ओके, सरेआम जाके दीनदार के साथ किसी के मौलवी या किसी बाप से ही कह दो निकाह पढ़ा दो, 2 दिन में शादी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। बाप कहता है नहीं मुझे तुम पसंद नहीं या मैं नहीं कर सकता, तो उसके बाद एक बड़ी सी छुरी लेके ना, तो वो अपनी इस ख्वाहिश के ऊपर ज़िबा कर दो उसको। ये है मर्द के लिए हुक्म, किसी बाप और भाई से पूछे बगैर किसी की बहन या बेटी से राहो रसम बढ़ाना, ये जुर्मे अजीम है, ये जिना है, ये बेहयाई है, ये बदकारी है, ये गंदापन है। फिर वो लड़कियां भी जब उन पैगामात को कबूल करती हैं, अगर आप लड़की हैं ना, मेरी बात तो आप ही सुन रही हैं ना, अगर आपको कोई फूल फेंके ना, तो वो फूल जाके अब्बू को दे देना कि अब्बू ये फूल आया, आप प्लीज जरा चेक कर ले किसने दिए। आई एम सीरियस, अब्बू को बताएं कि अब्बू ये फलां लड़का मुझे पैगाम देता है, जरा बात करें इसके अब्बू से जाके। और अगर आपको भी कोई अच्छा लगता है ना, तो आप भी यही कर सकते हैं, कोई तरीका नहीं है इसमें तीसरा, कि किसी की बहन बेटी से राहो रसम फोन पे चैटिंग पे। अल्लाह की कसम खाती हूँ मैं आपको, इधर बैठे हुए मुझे शिद्दत अच्छी नहीं लगती अपने अंदाज में, लेकिन ये जिना के दरवाजे हैं जो हमारे हाथों में पड़े हुए इस वक्त। जाहरी बात है भाई, एक भूख है, खाना ही कोई नहीं, सब्र कर लेगा ना, और भूखे के हाथ में बिरयानी की प्लेट दे दे और कहना खाना नहीं, खुशबू उसका दिमाग खराब कर रही है। आज जो वे ऑफ लिविंग और जो तरबियत के अंदाज़ है, मैं तो कहती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें औलाद नहीं दी, वल्लाही मिंबर पे बैठ के कह रही हूँ, क्यों जो फितने हैं। और मैं कहती हूँ शायद मेरे अंदर तो इतनी अकल ही नहीं कि मैं किसी एक बच्ची की या बच्चे की तरबियत कर सकूँ, आई गिव अप, आई कैंट। ये अल्लाह का तकवा होगा तो बच्चे सही होंगे, मेरे अंदर तो कोई ताकत नहीं है, मैं तो उनको बता ही सकती हूँ। सच्ची जो बात है, जो फितने, जो हालात है, अगर आप कहते हैं कि आपके बच्चे अप टू डेटेड रहें, फोन भी उनके पास, आईफोन भी उनके पास, आईपैड भी उनके पास कोई और भी तरीका है, कोई एक सिम एक की, दूसरे की, चौथे की, ये वल्ला ही आपने खुद उनके हाथों में अंगारे दिए हैं। हाँ उनकी तरबियत अच्छी की हुई है तो ऑफकोर्स ये जरूरत है, यही आज समझाया जा रहा है। ये फोन मेरे भी तो आगे रखे ही हुए है ना, अब ये फोन है आपके मेरे वाले हमारे में से 98% के पास यही फोन होंगे, इधर इसका इस्तेमाल क्या है, बस ये देख लीजिए। अब आपके अच्छा बच्चों के फोन हटा लें, फिर वो अकेले जाते हैं, फिर पता, मैं नहीं कह रही कि उनके फोन हटाएं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उनको पहले इस दीन की समझ दें। एक आइडियल सोसाइटी में ये सोच भी नहीं आ सकती कि किसी की बच्ची या बच्चा 17-18 साल का हो जाए, मिसाल है, जिसको आप एक प्यूबर्टी की एज फितरतन लेते हैं सोसाइटी के एतबार से, ये आइडियल माँ बाप होते ही नहीं कि 17, 16, 15 या टीन एज ही चले कहले शुरू होने तक बेटा बेटी कुरान ना पढ़े हो, उनके अंदर ईमान मोहब्बत ना आई हो। 16-17 साल के लड़कों ने अबू जहल को कत्ल किया था, माँ ने कहा होता कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है, मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का था, सिंध फतह कर दिया। क्योंकि आप बताइए, अगर माँ ने उसको ये तरबियत ना दी होती, यकीन करें माँ जेब में पैसे डाल के फिरती थी कि कहाँ कोई दीनदार आलिम है वो इनको कबूल कर ले। आपने इमाम रबी का वाक्या सुना होगा 20 बार। ये भी छोटे थे तो उनके बाप जो थे वो किसी जगह चले गए, कभी बाप जिहाद पे चले जाते थे उस दौर में, कभी खुद दीन सीखने चले जाते थे, कोई भी काम था। और जाते जाते एक थैली थी अशरफियों की या जो भी माल होगा, बीवी को दे गए और बेटा था साथ, छोड़ के चले गए। कितने साल, शायद 17-18 साल वो ना आए वापस। वो औरतें भी कैसी सब्र वालियां थी। बहरहाल उसके बाद वापस आए, आने से पहले रास्ते में मस्जिद थी, वहां नमाज पढ़ी। जब नमाज पढ़ी तो वहाँ बहुत ही खूबसूरत सा एक जवान था और वो दर्स दे रहा था, नमाज पढ़ रहा था। उसको देख के कहते हैं, कितना खुशकिस्मत वो माँ बाप होंगे, ये जो बच्चा किसका है। खैर वापस आए, दरवाज़ा नॉक किया, बीवी घर थी, पहचान गई, आप किधर आप कहाँ। खैर कोई इस तरह के लंबे चौड़े खाते नहीं होते थे उस दौर में जो आज के शिकवे शिकायतें हैं। कहने लगे कि बेटा किधर है, कहा वो बाहर गया हुआ है। कहा अच्छा ठीक है, वो पैसे किधर हैं वो जो तुम्हें दे गया था। देखिए मर्द इतने साल भी बाद आज भी आए ना तो हिसाब मांग रहा है। कहा वो पैसे किधर है, कहा कि अभी देती हूँ, तो उसका हिसाब देती हूँ आपको ना। ये बातें कह रहे थे ना तो दरवाज़ा नॉक हुआ, तो बाहर से एक बड़ा खूबसूरत जो भी सुन्नत चेहरे का बच्चा था लड़का, वो अंदर आया। तो वो वही बच्चा था जिसको मस्जिद में नमाज पढ़ता पढ़ाता देखा। तो माँ ने कहा कि ये तुम्हारा बेटा है और जो पैसे तुम दे के गए थे वो मैंने इसकी तालीम पे लगाए हैं। और ये कोई हैरत की बात नहीं है, हम भी एक यूनिवर्सिटी का खर्चा साल का निकाले तो कई अशरफियां बनती हैं। ये तो नहीं है कि हम नहीं लगाते, सब लगाते, तरजीहात बदल गई। तो बात जो है आगे चली जाती है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा वल बनीन। ये बनीन साथ आ गए, ये नेमतें अल्लाह की, हमने इनको कैश कराना है। मैं कहती हूँ किसी के पास 1 पाउंड भी जेब में ना हो, आपके पर्स में 1 पाउंड भी ना हो आपकी जेब में, लेकिन अल्लाह ने आपको एक नेक बेटा दिया हुआ है, या आपको एक नेक, सिर्फ एक, दो नहीं, एक बेटा या एक बेटी या एक बेटा एक बेटी या वट्स एवर, तो आप दुनिया के क्या जन्नत के अमीर तरीन शख्स में शामिल हो सकते हैं। ये हमारी नासमझियों ने औलादों को बिगाड़ दिया। और जो फिर हम सब जो यंग हैं जिनके बच्चे नहीं है, मिसाल है जो अभी खुद यंग एज में, वो क्या करें, उनसे पूछिए। मैं कहती हूँ कि हम आज अपने माँ बाप के लिए क्या हैं, नासूर, कब्रों में उनके सांप और बिच्छू जाते हैं हमारे करतूतों की वजह से, या हमारी वजह से कोई खैर जाती है। आप सोचिए, आप तो बच्चियां अच्छी हैं तभी तो कुरान पढ़ रही हैं ना। हमारी सोसाइटी की 98% बच्चियां और बच्चे आज इस वक्त किधर है, यानी कितनी हमारी रग भड़कती है उनके दीन के लिए। कहते तो हैं हम, तड़प तो कोई नहीं। मैं तो कह सकती हूँ कि मेरे बच्चे हों तो मेरे से ज्यादा शायद जालिम ही कोई ना माँ होती। मैंने तो नहीं खाना देना था अपने बच्चे को अगर वो फजर पे ना उठे। जाते हो भूखे मरो, तुम्हारी रूह अंदर से चिलचिला रही है तो खाना ना तुम्हारे पेट में गया तो इसे एक टोस ने तुम्हें क्या देना। हमारा हाल है, हम बातें भी कर देते हैं फिर उनके मुंह में ठोसते भी हैं, चलो खा लो मेरा बच्चा, जाने दें इनको बगैर स्वेटरों के, जाने दें बगैर खाने के, नमाज नहीं पढ़ते तो ये आपके लिए जहन्नम का ईंधन बनेंगे, अल्लाह ना करे। अगर आपने इनको नहीं सही समझाया, इस्लाम इस पे बहुत बेलाग है क्योंकि ये आपकी आखिरत की करेंसी है। देखिए आपके पास असली डॉलर है ना, मैं अमेरिका से आई, मैं असली डॉलर लेके आई, मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं इसको पाउंड में भी बदल लूंगी, मैं क्रोन में भी बदल लूंगी, मैं रुपीस में भी बदल लूंगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मेरा डॉलर ही नकली होगा तो किस मुल्क में इसको एक्सेप्ट करेंगे, किस मुल्क में मैं धोखा दे के उसको चेंज कराऊंगी। तो आपका बच्चा आपका डॉलर है, करेंसी है, ये अल्लाह ने इसलिए रखी कि इनको जाओ कैश कराओ, ये आंखों की ठंडक है, ये कोई रोग है, ये कोई जिंदगी है कि तुम उनको देखो तो वो तुमसे जान छुड़ा रहे हैं, वो तुम्हें देखते हैं तो तुमसे छुटते हैं। तो लिहाजा हम सबको उम्मत मोहम्मदिया के अफराद तैयार करने हैं, सिर्फ अपने बच्चे नहीं हम तैयार कर रहे। अल्लाह सुब्हान तआला कहता है कि देखो, सोचो, गौर करो, आज इस दुनिया ने और इस पेट के मसले ने हमें इतना ज्यादा मजबूर कर दिया कि हम इस पे बहुत रिलैक्स हैं कि हमारे बच्चे अपने कैरियर बना रहे हैं। देखिए मैं आपको सच कहूँ, ये मेरी बातें बुरी तो नहीं लग रही, कड़वी तो हैं, इसलिए कि हम कुरान पढ़ने वालों में अगर ये रूह नहीं बेदार होगी तो बाहर वालों में नहीं होगी। अगर आपकी मेरी बेटी हमसे इजाजत मांगे कि मैं डेट पे जाऊं तो हम जाने देंगे? कोई एक आप में से, लिबरल से लिबरल भी, नहीं जाने देगा ना, मैं अपने फ्रेंड को मिलने जा रही हूँ, जाने देंगे नहीं जाने देंगे ना। और भी कोई खराब चीजें दो चार जहन में लगा लीजिए, वो कह के मैं शराब पी लूं, पीने देंगे? सोच भी नहीं सकते हम। लेकिन वो हमसे इजाजत मांगते हैं कि हमें अपने कैरियर बनाना है, हमें जॉब करनी है, या हमें पढ़ना है, पढ़ने लिखने के लिए हम भेजते हैं ना, जरूरत के लिए भेजते हैं ना, कि भाई एक फीस जमाना, एक जरूरत है, एक हमारे बच्चों की, एक हमारी, ये दिस एंड दैट। अब आप इसको एक साइड पे कर ले, आप देखिए हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये याद रखिए। इस वक्त उम्मते मुस्लिमा को ओवरऑल आप देखेंगे ना, तो जो इस वक्त हमारे माँ बाप वाली जनरेशन है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, जो उससे अगली यंग्स वाली जनरेशन है वो ज्यादा बेहतर है, इल्ला माशाल्लाह, एक्सेप्शन हर जगह। और वजह पता क्या है कि जो जनरेशन इस वक्त पेरेंट्स के रूप में है ना, यानी 40s 50s में जो माँ बाप है, उनको सिर्फ कुरान मिला, कुरान का तर्जुमा नहीं मिला। नमाज पढ़ो, उठो नमाज पढ़ो, आपके अब्बा अम्मा यही डांटा डांटी थी ना, उठो नमाज पढ़ो, फजर के बाद नहीं सोते, कानों में दादू नाना की आवाजें हैं। यकीन करें, सिर्फ इसलिए हमें नानी के घर जाना मुश्किल लगता था छुट्टियों में, कि नाना अबू ने फजर के बाद सोने नहीं देना, ना सोते थे ना सोने देते थे, कहीं खिड़कियां खुल रही हैं, कहीं पंखे लग रहे हैं, कहीं एसी बंद हो रहे हैं, कहीं चादर, सवाल ही नहीं कुछ हो सके। हमारे बूढ़े नाना थे, अल्लाह उनको जन्नत दे, शायद 80s में जाके दुनिया से गए हैं। हमने जब से आंख खोली यही देखा है कि नमाज के लिए फजर पे जाते थे पैदल, और फिर जब वापस आते थे तो तकरीबन 8-9, यानी 2-2.5 घंटे बाद आते थे। क्या पहले मस्जिद में गए, जो भी हुआ नमाज जो भी पढ़ी, फिर फर्ज पढ़े, फिर उसके बाद वहाँ जिक्र अजकार, सूरज चढ़ने तक नमाज मस्जिद में रहते थे, वहाँ फिर अपनी इशराक पढ़ के फिर वापस वॉक करके आते थे, और घर आने तक उनके लिए छुरी सेब काट के, या कटा हुआ, या बादाम, नानी ने, हमारी नानी बादाम खोट खोट के ना बच्चों को पिलाया, आज भी याद है, सरदाई बोलते थे शायद उसको, रात को दबे दाम भिगो के उसको भिगोना, फिर उसको सुबह उठ के घोट के, तो बच्चों को बादाम वाला दूध देना, ये हमने अपनी आंखों से देखा हुआ। और क्या सेहत थी उनकी, इतनी सी रोटी, छोटा सा फुल्का होता है ना, एक फुल्का खाना है, ना चिप्स, ना बर्गर, ना शामी, ना फुलान, ना कुछ, आज तो 100 चीजें हमारे अपने आगे, हमारे बच्चों के आगे, तो सोचना है कि हम किधर जा रहे हैं। आप देखिए कि मेरी बातों को ना आप इस तरह ना सोचे कि मैं एक्सट्रीम पे जा रही हूँ, मुझे पता है कि आप सब बहुत अच्छे हैं, और हमारे मुसलमानों में इस वक्त बहुत अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे ऐसे भी नहीं हैं, लेकिन आज देखिए जिन चीज़ों में पढ़कर हमारी दुनिया गई, ये जो औरतें बाजारों में जानती हैं, कनातीर अल-मुकंतरत मिन अज़्ज़हबी वल-फिज़्ज़ा वल-खैल अल-मुसव्वमा, ये क्या कुछ होता है? ये आपके लिए कुछ सैंपल लेके आई हूँ, बड़े दिन से रोके हुए थे। अब ये देखिए कि अब ये क्या है, ये डाइनिंग टेबल पर डालने वाला कपड़ा है, मिडल में डालने वाला कपड़ा ना, एक टेबल रनर कह लें इसको, मुझे तो आता भी नहीं कहना है। और दिखाएं ज़रा चीज़ें, मैं अक्सर सोचती हूँ कि लोग बाजारों में जाते हैं तो करते क्या है भाई, आप कितनी कुछ चीज़ें लाएंगे और क्या कुछ करेंगे, तो आप देखिए कि ज़रा हमारे गम और हमारे हम देखिए। अच्छा, जो मैं गलती करूँ मुझे बता दीजिएगा, ये चम्मच किस लिए, आपको पता है तो आप बता दें, ये सैलड के लिए, मेरे जैसा हो तो इसको फेंक देगा कि ये तो टूटा हुआ अंदर से, लेकिन मुझे पता चला कि ये चमचा सैलड निकालने के लिए, राइट? इसको क्या हुआ गरीब को, ये देखिए, ये किस लिए जी, ये कप के अंदर टंगने के लिए, यानी कि कप के अंदर इसको टूंग दें यूं, ठीक है, ये यूं करते होंगे ना, इससे फायदा क्या होता है जी, आपको ज्यादा पता है, बताइए। ये सिर्फ कप के अंदर अटका दो के, ताकि अदा है ना, चलो इसका तो आपका बिल्म काफी है माशाल्लाह। अच्छा जी, ये क्या है, कॉफी जो छोटे, पूरा फुल कप नहीं डालनी, चम्मच छोटी चम्मच है तो उसके साइज की है। अच्छा जी, ये क्या है, ये क्या है, पेचकस, पिक्कल लेना हो तो फिर आप ये चम्मच लें, पिक्कल लेना है ना तो इसको लेना होगा, ठीक है। अच्छा, साथ साथ ये भी बता दूं कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ताकि आप लोग भी ले आए, ये एडवर्टाइजमेंट हो रही है। अच्छा जी, इसको क्या मसला, ये क्या जी, ये हनी लें तो उसको करके दिखाएं कैसे डालते हैं, देखा अब आसफा का भी आज शॉपिंग का रेट बढ़ गया, ये इसको जरा मरोड़ा ऐसे कि हाथ ना मोड़ना पड़े, चम्मच ही मुड़ जाए। अच्छा जी, ये छोटा कंट है, ये तो कंट ही है ना, इसके साथ तो मेरा बड़ा जबरदस्त तजुर्बा है। ये देखिए, अब आप दूर से देख रहे हैं ना, ये ग्रेपफ्रूट खाने का चमचा है। इन्होंने अल्लाह की बंदी ने एक दिन ग्रेपफ्रूट काट के मुझे दिया। मेरी आदत है चम्मच को रगड़ के खाती हूँ कि छोटे ना, मेरे ये सारे जबड़े छिल गए इससे। इसमें वो साइड पे ना, अब ये ऑनलाइन वाले भी तरस रहे होंगे कि हमें भी पता चले चीज़ें। तो अब ये देखिए इसमें कट लगे हुए हैं कि जब वो ग्रेपफ्रूट उसमें डालेंगे ना अब, तो फिर वो अच्छी तरह निकल आएगा। और अच्छा जी, ये क्या है? संडेज की स्वीट डिश जब खाते हैं तो ये चम्मच खाते हैं, और मंडेज की ट्वीट स्वीट डिश। अच्छा जी, ये क्या है? ये क्या है? ये नींबू काटने, इसके नीचे बीच में मैं ऑनलाइन वालों की भी मदद करूं कि इसके बीच में एक सुराख है, तो जब आप, मैं मुझे समझ आ गई ये क्या है। आप देखिए कि वो जब पिकल्स वाला होता है ना, जैसे ऑलिव्स या जैसे अरबिक पिकल्स होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा पानी आ जाता है ना साथ, तो ये चमचा लें तो जब इसमें लेंगे ना तो उस सुराख में से पानी निकल जाएगा तो पिकल ऊपर है। कितने मसलों का हल है माशाल्लाह। ये काफ़ी लंबा है, ये लंबे कप में जब चाय पीनी हो तो उसको अंदर स्टर करने सच। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है जी? ये देख लें, ये बता दें, हड्डी में से मीख निकालने वाला चमचा, हड्डी में से। ये रिसर्च है ना, इसको कहते हैं ना नॉर्मल स्पून है जी। ये सूप पीने वाला चम्मच है, ये सबको हमें पता है, ये सूप वाला है ये, क्योंकि सबके घर में जो है इसलिए ठीक है। अच्छा जी, ये आइसक्रीम खाने वाला होगा, ठीक है, ये आइसक्रीम वाला। इसको सुराख क्यों हो गए इतने? ये देखिए, ये अचार निकालने वाला चमचा है कि जब उसमें से इसमें डालेंगे तो इन सुराखों में से तेल निकल जाएगा और अचार, आप मोटे नहीं होंगे माशाल्लाह, फिर लोग मोटे नहीं होते, राइट? ठीक है जी। अच्छा, ये वही है पिकल्स हैं। अच्छा जी, ये क्या है? ये केक फोक्स हैं भाई। अब आप मुझे बताएं कि ये, आपको पता है कि जो बता रही हैं कि चमचों का काम दिया है, तो उस दिन हमारी एक सिस्टर मैनचेस्टर से भी आई हुई थी, तो मुझे अगले दिन उन्होंने बताया कि मैंने अगला दिन लगा के अपने मियाँ को साथ लगाया है और चम्मच गिने हैं। तो पता नहीं, मुझे अगर वो सुन रही हैं तो लिख दें कितने आए थे। काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए 58 या कुछ 50-60s में चम्मच सिर्फ चावल खाने वाले वो निकल आए हैं घर से अभी इतने, और अभी कह रही हम स्टिल वी आर गिन रहे हैं अभी। ये क्या है? ये तो होना चाहिए ना घरों में। ये देखिए, अभी तो और बड़ा कुछ निकलेगा। हाँ, ये देखें जी, ये भी एक अदा है। देखें, आपको बाद में बता देंगे कहाँ से मिलती हैं, आप क्यों परेशान हैं। तो ये देख रहे हैं आप, चम्मच प्लास्टिक ग्रीन और ब्लू से है, पीछे फिश बनी हुई, आगे सुराग। ये क्या है? ये भी पिकल उठाने का है, कॉकटेल के लिए। अब आप देखिए जी, जजाकल्ला खैर। और कुछ है तो दिखा दो, नहीं तो ये पिंक।